हम थोड़ी देर पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर हम आराधना करेंगे। तो आइए हम चलते हैं रोमियो की पत्री का तीसरा अध्याय में। पिछले संडे हमने रोमियो की पत्री में से अध्ययन शुरू किया था और उस अध्ययन के बाद कुछ कमेंट्स सुनने को मिले और उससे मुझे पता चला कि एक बात पता चले कि लोग या तो उन क्योंकि ये टीचिंग में कम से कम दो बार चर्च में ये सिखा चुका हूँ हमारी धार्मिकता के विषय में और यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो पिछले संडे कमेंट सुनने के बाद पता चला कि या तो उन दिनों में जिन संडेस को मैं सिखा रहा था लोग नहीं थे या फिर लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे। तो ये मैं तीसरी बार सिखा रहा हूँ क्योंकि बाइबल की कोई भी बात नहीं है, सब पुरानी है और कई बार जब हम दूसरी या तीसरी बार सुनते तो हमें लगता है कि पहली बार सुना है। वो इसलिए है कि हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो चलते हैं रोमियो की पत्री का तीसरा अध्याय। 20वां पद में से हमने शुरू किया था और 26 तक हमने अध्ययन किया था। आज हम वहीं से शुरू करेंगे। 20 से लेकर 26 तक का अध्ययन करते हुए हमें यह पता चला था कि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया जब हमने यीशु मसीह का उस बलिदान पर विश्वास किया या हमने जब ये माना कि हम पापी थे और यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलता है। जब हमने ये विश्वास किया तो हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए और ये जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया यानी हमें धर्मी ठहराया वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर स्वयं धर्मी है और उसके सारे कामों में परमेश्वर की धार्मिकता पाई जाती है। और ये बात भी हमें उस दिन पता चली कि पुरानी वाचा की शिक्षाओं में चलने के द्वारा यानी मूसा की शिक्षाओं में चलने के द्वारा ये धार्मिकता हमें नहीं मिली। अब एक सवाल आता है ये पता चलने के बाद कि मूसा की शिक्षा यानी पुरानी वाचा की बातों के अनुसार चलने से हमें धार्मिकता नहीं मिली तो इस सत्य को आज के युग में हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए। कारण यह है कि हम में से कोई भी यहूदी नहीं थे, हमारे पास मूसा की शिक्षा नहीं थी, हम यहूदी नहीं थे, हमारे पास मूसा की शिक्षा नहीं थी। तो ये जानकारी से हमें क्या लाभ हो रहा है क्योंकि पवित्र शास्त्र की हर शिक्षा में कुछ ना कुछ लाभ है। तो हमारे लिए ये इस सत्य को या ये सत्य हम इस तरह से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि हम भी यहूदियों के समान उन शिक्षाओं के आधार पर जो हमें अपने बाप दादाओं से मिलती रही परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की कोशिश में थे। हमने ये सोचा था कि हमारे अच्छे कामों के कारण हमें मुक्ति मिल सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे अपने लोग, हमारे रिश्तेदार और मित्रगण जो इस समय परमेश्वर को नहीं जानते जिनके बारे में हम ये गवाही देते हैं वैसे तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते और भी बहुत सारी बातों में मसीह लोगों से अच्छे हैं, उनके बारे में हम इस गलत फहमी में ना बैठे कि वो धर्मी ठहराए जाएंगे। उनके किसी भी अच्छे काम की वजह से वो परमेश्वर के सामने कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। इस सत्य को इस तरह से लागू करने से एक और फायदा होगा, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बहुत ईमानदार हैं, जो बिल्कुल भी मूर्ति पूजा नहीं करते, जो हमारे रिश्तेदारों में या मित्रगणों में आते हैं, जिनके लिए हम बहुत अच्छे सोचते हैं, हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह के बिना वो धर्मी नहीं बन सकते। तो पवित्र शास्त्र की बातों को समझना उसके बाद उसको अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। यदि हम सिर्फ इतना ही सोचेंगे कि व्यवस्था के बिना, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, मूसा की शिक्षा कहते हैं, उसके बिना आज एक इंसान धर्मी बन सकता है तो हमारा ध्यान हमेशा यहूदियों पर रहेगा और हम ये सोचते रहेंगे कि यहूदी लोग जो है बेवकूफ है, पागल है, जो अभी भी व्यवस्था में चलने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने देशवासियों को भूल जाएंगे। इसलिए उस बात को इस तरह हम अपने जीवन में लागू करेंगे। 26वां पद में चलते हैं, रोमियों की पत्री का तीसरा अध्याय का 26वां पद।
वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो गई, प्रकट हो कि जिससे वे आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो।
यानी परमेश्वर ने उस समय जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर मरा भविष्य को देखा, हम लोगों को देखा और उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए ये ठहराया कि जिस समय हम विश्वास करेंगे हम धर्मी होंगे। यानी आज के युग के लिए परमेश्वर ने लगभग 2000 साल पहले ये ठहराया कि जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करेगा वो धर्मी ठहरा जाएगा। दूसरे शब्दों में जो भूतकाल में यीशु मसीह ने किया उस काम की वजह से वर्तमान के लोग धर्मी ठहरा जाते हैं, और इस काम के द्वारा परमेश्वर दुनिया को, संसार को, मानव जाति पर यह प्रकट करता है कि वो कितना धर्मी है। और उसने दुनिया को यह भी दिखाया कि वही अकेला एक इंसान को धर्मी ठहरा सकता है जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। 27वां और 28वां पदों को हम देखते हैं। यहाँ पर इन बातों को बताने के बाद पवित्र आत्मा एक सवाल पूछता है, क्या हम घमंड कर सकते हैं? क्या हमने ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से हम धर्मी ठहराए गए? घमंड करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। किस व्यवस्था के अनुसार? अब फिर व्यवस्था शब्द वहां पर पाया जाता है, और इस व्यवस्था का अर्थ क्या है? नहीं, आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या हम घमंड कर सकते हैं। फिर पवित्र आत्मा कहता है घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। किस व्यवस्था के आधार पर? तो यहाँ पर जो व्यवस्था शब्द आप हिंदी में देख रहे हैं या अंग्रेजी में लो देख रहे हैं, उसका सही अनुवाद होना चाहिए कौन सा सिद्धांत या प्रिंसिपल के आधार पर। यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम में आ रहा है? कि एक इंसान पुरानी वाचा की शिक्षा को मानने के वजह से नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। यानी हमारा परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर जो गुनाह का दब्बा लगा हुआ था, यानी परमेश्वर की अदालत में हम मुजरिम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर एक न्यायी है। आप सोचिए, परमेश्वर की अदालत में परमेश्वर न्यायी की सिंहासन पे बैठे हैं, हम मुजरिम थे और परमेश्वर ने क्या किया, हमें हमारे लिए क्या कहा, हम धर्मी हैं, यानी हमें बिल्कुल बरी कर दिया। He declared us innocent। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अब 29वें पद को पढ़ते हैं, 29 और 30 और 31। तो सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है यहूदियों और अन्य जातियों का परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है जो यहूदियों को विश्वास के द्वारा और अन्य जातियों को भी उसी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता। अब आखिर में एक बात आती है, अगर हम विश्वास पर इतना जोर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या यह है कि हम मूसा की शिक्षा को भूल जाए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लिखा ना 31वें पद में, अगर हम विश्वास पर इतना जोर दे रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम व्यवस्था को भूल जाएं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। ये कैसे? अभी कुछ समय पहले हमने कहा था कि व्यवस्था के यानी मूसा की शिक्षा के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन आखिर में फिर पवित्र आत्मा हमें होकर पॉल कहता है कि हमारे विश्वास के द्वारा हम उसी शिक्षा को जो मूसा के द्वारा हमें पृथ्वी में आई थी हम स्थिर कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस विश्वास करने से पहले वो इस बात को मानता है कि वो पापी है। व्यवस्था में लिखा, व्यवस्था के अनुसार, मूसा की शिक्षा के अनुसार हर इंसान पापी है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उससे पहले हमें यह मानना जरूरी है ना कि हम पापी हैं। तो ऐसा मानकर हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं कि व्यवस्था सही बता रहा, यानी मूसा की शिक्षा सही है, हम पापी हैं। क्योंकि उस शिक्षा का उद्देश्य यही था कि मानव जाति को यह पता चले कि वो कितना पापी है और किस वजह से पापी। व्यवस्था यानी मूसा की शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं था कि हमें पाप से छुड़ाए। तो इसलिए नंबर वन, ऐसा करके अपने आप को पापी मानकर हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाकर व्यवस्था को स्थिर करता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए लहू बहाना जरूरी है। मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय का 17वां पद में यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा मत सोचना कि मैं मूसा की शिक्षा को खारिज करने के लिए या खत्म करने के लिए आया हूँ, बल्कि यीशु मसीह ने कहा था मूसा की शिक्षा और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा को खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये बात आपको गलातियों की पत्रिका 4वां अध्याय में
चार और पांच व पदों में भी मिलेगा। तो सारी बातों को निचोड़ क्या है, हम व्यवस्था को कैसे स्थिर करते हैं? एक, जब हम अपने आप को पापी मानते हैं, हम व्यवस्था यानी मूसा की शिक्षा को स्थिर कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं कि मूसा की शिक्षा सही है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्रूस पर जब लहू बहाया, इस बात को फिर से स्थिर किया कि पाप के छुटकारे के लिए लहू बहाया जाना जरूरी है। तीसरी बात जिसको सुनकर आपको बहुत मजा आएगा कि हम व्यवस्था को यानी मूसा की शिक्षा को कैसे स्थिर करते हैं, जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो उस समय जब मैंने और आपने यीशु मसीह का उस काम पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमारे खाते में लिख कि जैसे कि हमने स्वयं किया हो। लहू यीशु मसीह ने बहाया, लेकिन आज मेरे और आपके खाते में स्वर्ग में जो पुस्तक है उसमें ये लिखा गया है कि इस व्यक्ति ने अपने सारे गुनाहों के लिए लहू बहाया। ऐसा करके हम मूसा की शिक्षा को स्थिर करते हैं। उस शिक्षा में जो भी बातें दी वो सब पूरी होगी। 20वें पद में तीसरा अध्याय का हमने पढ़ा था कि मूसा की शिक्षा का पालन करने से कोई भी प्राणी परमेश्वर के नजर में धर्मी नहीं ठहराया जाए। तो इसको थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं इन सारे बातों को समझने के बाद। उन लोगों का क्या होगा जो यीशु मसीह के आने से पहले जीवित थे? उन यहूदियों का क्या होगा जिनके पास मूसा की शिक्षा थी? क्या वो धर्मी थे? क्योंकि 20वें पद में आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं, तीसरा अध्याय का लिखा है कि मूसा की शिक्षा का पालन करने से कोई भी प्राणी परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। यदि ऐसा है तो उनका क्या होगा जो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले थे या जीवित थे, उनका क्या होगा? ध्यान देना, 20वें पद में ये लिखा है कि आज के समय में, वर्तमान में मूसा की शिक्षा का पालन करने से कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। भूतकाल के लिए नहीं लिखा है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए लिखा है। यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के इस क्रूस पे जाने तक का समय में जो यहूदी लोग जीवित थे वो व्यवस्था का पालन करने से धर्मी ठहराए जाते थे। लूका रजी सुसमाचार का पहला अध्याय का 6वां पद जकरिया और एलिशाबा के लिए, जकरिया और एलिशाबत के लिए लिखा है कि वो दोनों परमेश्वर की नजर में धर्मी थे। अगर आपकी बाइबल खुल गई है तो एक बार पढ़िए, 1:6। क्यों धर्मी थे? क्योंकि वे दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, यानी उस समाने की शिक्षा के अनुसार चलने के कारण वो दोनों परमेश्वर की नजर में धर्मी थे। पौलुस, जिसके द्वारा रोमियो की पत्री लिखी गई है, जिसके द्वारा आज की चर्चा का विषय हमारे पास है, वो स्वयं अपने बारे में कहता है फिलिपियों की पत्री में कि व्यवस्था में पाई जाने वाली धार्मिकता के अनुसार मैं निर्दोष था। अगर यीशु मसीह नहीं आए होते पौलुस के जीवित रहते समय तो परमेश्वर की नजर में पौलुस धर्मी था, लेकिन उसके जीते जी यीशु मसीह आया और उसने यीशु मसीह से उस दिन मुलाकात होने के बाद इस बात को समझ लिया कि अब मुझे व्यवस्था की धार्मिकता नहीं, मुझे वो धार्मिकता चाहिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। फिलिपियों की पत्री का 3रा अध्याय में इसलिए वो कहता है कि मैंने इसलिए अपने आप को या अपने जीवन से उन सब चीजों को त्याग दिया जो मुझे व्यवस्था से और जरियों से मिली थी। अब मैं उस धार्मिकता को पहनना चाहता हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे मिली है। जो लोग व्यवस्था से पहले जीवित थे उनका क्या होगा? मूसा के आने से पहले जो लोग थे, जो यहूदी थे, उनका क्या होगा? क्या वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जा सकते हैं? जैसे अब्राहम थे, अब्राहम वो पहला यहूदी है, उसका क्या होगा? उसको कैसे धर्मी ठहराया जाए, परमेश्वर धर्मी ठहराएगा? उसके पास तो मूसा की शिक्षा नहीं थी, उसके जीते जी यीशु मसीह नहीं आया था, तो वो कैसे धर्मी ठहराया जाएगा? पवित्र शास्त्र रोमियो के पत्री में लिखता है 4वां अध्याय में कि विश्वास के कारण वो धर्मी ठहराया गया। कैसे विश्वास और क्या विश्वास? जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा उसने विश्वास किया। जो कुछ मूसा के द्वारा उस जमाने के लोगों को परमेश्वर ने कहा, लोगों ने विश्वास किया। विश्वास करने का मतलब है कि उसके आज्ञाओं के, उन आज्ञाओं के अनुसार लोगों ने किया, इसलिए वो धर्मी ठहराए गए। अब्राहम मूसा की शिक्षा से पहले थे, मूसा अब्राहम को परमेश्वर ने जो कुछ कहा, अब्राहम ने विश्वास किया, उसके अनुसार काम किया, वो धर्मी ठहराया गया। नूह धर्मी था, नुआ क्यों धर्मी ठहराया गया? उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। कौन सी बात पर? जब उसको कहा गया कि प्रलय आएगा, इसलिए एक नाव बना, उसने बनाया। तो आप देख रहे हैं ना कि परमेश्वर की बातों को मानने से, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने से एक इंसान धर्मी ठहराया जाता है। शुरू में मूसा की शिक्षा नहीं थी, तो जो कुछ उस जमाने के लोगों को परमेश्वर ने कहा और जिन लोगों ने उन बातों पर विश्वास किया वो धर्मी है। मूसा की शिक्षा दिए जाने के बाद, मूसा की शिक्षा के अनुसार लोग, जितने लोगों ने विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। यीशु मसीह के आने के बाद अब परमेश्वर एक और बेहतरीन तरीके से मानव जाति को धर्मी ठहराता है, वो है यीशु मसीह के उस बलिदान को मानने से। यूहन्ना के पत्री का 8वां अध्याय में 56 पद में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इब्राहिम के बारे में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम ने मेरे दिनों को देखा, वो देखना चाहा इस आशा पर कि मैं एक दिन आऊंगा, और बल्कि यूनानी में लिखा है कि वो खुशी के मारे कूदने लगे। He was jumping with joy, इस आशा के साथ कि एक दिन मैं आऊंगा, और उसने मेरे दिनों को देखा और आनंदित हुआ। उसने आत्मा में उन दिनों को देखा, यीशु मसीह के दिनों को देखा और विश्वास किया कि ऐसा होगा। कहने का मतलब, इब्राहिम के साथ, इब्राहिम से पहले जो लोग जीवित थे और मूसा के समय में भी जो लोग जीवित थे, व्यवस्था यानी मूसा की शिक्षा का पालन करते हुए वो इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि एक दिन यीशु मसीह आएगा। यानी व्यवस्था का पालन करना इस बात का सबूत था उनके लिए कि वो इस सच्चाई पर विश्वास कर रहे हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएगा। इसलिए उनका वो विश्वास उनके खाते पे धार्मिकता के रूप में चढ़ाया गया। इन सारी बातों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? पिछले संडे मैंने बताया ना कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं या बाइबल की कोई शिक्षा, कोई बात हम तक पहुंचती है, कोई सत्य या कोई गुप्त बात हमारे सामने खुल जाता है, तो उससे हमें क्या लाभ होगा? हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आने के लिए उस सत्य को या उन बातों को अपने जीवन में लागू करना होगा। तो ये सत्य हम कैसे लागू करेंगे? सबसे पहले, हम जो धर्मी है परमेश्वर के नजरों में या परमेश्वर के सामने हम जो धर्मी है, ध्यान रखना ये परमेश्वर ने किया। इस बात को समझना जरूरी है। इस बात को समझना जरूरी इसलिए है कि ये जो हम धर्मी ठहराए गए ना, ये हमारी पदवी है परमेश्वर के घराने। ये पदवी जो हमें मिली है, ये स्थान जो हमें मिला है कि हम धर्मी है, ये परमेश्वर ने किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब अपने चाल चलन में हमेशा धर्मी ठहरेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोजीशन। परमेश्वर के सामने सबके सब धर्मी है, हम सब जिन्होंने विश्वास किया। लेकिन हमारे सोच में और हमारे व्यवहार में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा धर्मी हो। मैं जानता हूँ ये शिक्षा कि हम धर्मी है, कुछ लोगों के लिए विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारी इस चर्च की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में जब ये शिक्षा दी जाती है, कुछ लोगों के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि परमेश्वर के सामने हम धर्मी है। लेकिन कुछ लोग बहुत आसानी से उसे ग्रहण करते हैं, उसके बाद एक गलत फहमी में रहते हैं कि इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं। हम जब भी जाएंगे परमेश्वर क्या देखेगा? हम परमेश्वर के पास जब भी जाएंगे परमेश्वर क्या किसको देखेगा? हमारे अंदर मसीहा को देखेगा, उसने ऊपर से पोशाक पहना रखा है धार्मिकता का, तो हम हमेशा ठीक है। तो कुछ लोग इसको गुनाह करने का लाइसेंस के रूप में देखते, मुंह से बोलते नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी हरकत, उनका व्यवहार ये दिखाता है कि उनका ऐसा मानना है। उदाहरण के लिए मैं आपको अगर एक पिस्तौल दूं ना, पिस्तौल राइट, गन, मैं आप सबको एक एक पिस्तौल पकड़ाऊं और उसको चलाना भी सिखाऊं, उसके बाद आप उस पिस्तौल को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जो चीज आपको मिली है वो चीज वैसे गलत नहीं है, एक अच्छी चीज, लेकिन आप उसको अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये जानकारी या ये समझ कि हम परमेश्वर की नजर में हमेशा धर्मी है, हम अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा काम, अच्छे काम इस तरह से होंगे कि हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे, हम नम्र रहेंगे इस बात को जानते हुए कि अगर हम परमेश्वर के सामने आज धर्मी है तो वो यीशु मसीह के कारण है, हमारे किसी काम की वजह से नहीं। हम इसलिए उस परमेश्वर को कभी भी दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे जिसने हम पर इतनी बड़ी करुणा दिखाई। हम उस परमेश्वर को प्यार करने की कोशिश करेंगे, उस परमेश्वर का आदर करने की कोशिश करेंगे और उस परमेश्वर की एक अच्छी गवाही हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को देने की कोशिश करेंगे। यह है उसका करेक्ट या सही इस्तेमाल। जब हम इस सत्य को सही रीति से ग्रहण करते हैं, हमारे लिए पाप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम पाप से घृणा करना शुरू करते हैं। और वो इसलिए नहीं करेंगे कि परमेश्वर खुश हो जाए, इसलिए करेंगे क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने अपने जीवन के लिए और अपनी चाल चलन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें धर्मी बनाने का काम परमेश्वर ने स्वयं किया है, लेकिन उस धार्मिकता में चलने की जिम्मेदारी जो है हमारी अपनी है। इसलिए योहन्ना की पहली पत्री का 8वां पद में परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम कभी कभी पाप कर सकते हैं, हमेशा नहीं। और पाप करने के बाद यदि हम ये कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम पाप करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन से निकल जाता है। यदि हम पाप करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, तब हम सत्य के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमारे चाल चलन में सत्य नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा में यीशु मसीह है, हमारे व्यवहार में यीशु मसीह नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उपाय भी दिया है हमें कि अपने पापों को मान ले। कुछ लोग रोमियो की पत्री का 8वां पद का पहला पद जिसमें लिखा है कि अब जो लोग मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि हम पाप कर सकते हैं क्योंकि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये सत्य है, आप कितना भी पाप करो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र एक जगह पे ये भी कहता है पाप का एक मजदूरी है। परमेश्वर आपको कभी दंड नहीं देगा, लेकिन पाप यदि हम करेंगे उसकी मजदूरी है, वो हमारे खाते में चढ़ता रहेगा और हमें बैंक अकाउंट में आता जाएगा अपने आप ऑनलाइन ट्रांसफर। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम अपने पापों को अंगीकार करें ताकि हमें पाप से परमेश्वर फिर से साफ कर सके और हमें माफी मिले। पिछले संडे हमने कहा था हमें धार्मिकता का वो पोशाक पहनाने से पहले परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह स्नान कराया था यीशु मसीह के लहू से। पहले स्नान हुआ, उसके बाद हमें वो पोशाक पहनाया। आमतौर पर हम स्नान करके बाहर निकलते हैं घर से बाहर अपनी धार्मिकता पहनने के बाद और सैंडल या चप्पल पहन के बाहर घूमते हैं। वापस घर आके हम एक काम करते हैं, हम फिर से स्नान करते हैं एकदम। चप्पल या सैंडल पहन के हम बाहर घूम के आए हैं तो पैर धोते हैं। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों का पैर धो रहा था, पतरस के पास पहुंचा, पतरस ने कहा कि प्रभु मेरा पैर मत धोना, और प्रभु ने कहा कि अगर मैं तेरा पैर ना धोऊंगा तो तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, यानी तेरा मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। तो पतरस ने कहा, पतरस वैसे थोड़ा जोशीला था, तो पतरस ने कहा अगर पूरी तरह एक बार स्नान करा ले। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, जो नहा चुके हैं उसका पैर धोना काफी है। हमारा स्नान हो चुका है यीशु मसीह के लहू में। और अगर आप उस पद को ध्यान से पढ़ेंगे, योहन्ना का 13वां अध्याय का 10वां पद में से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि तुम्हारा स्नान हो चुका है, तुम उन वचनों के द्वारा जो मैंने तुम्हें दिए हैं तुम्हारा स्नान हो चुका है। प्रभु ने कहा जिसका स्नान हो चुका है उसका पैर धुले जाना काफी है। हमारा स्नान हो चुका है यीशु मसीह के लहू में और हमें धार्मिकता का पोशाक पहनाया गया है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमारे पैर कई बार मेले हो जाते हैं। हमारे चाल पैर किस बात को दर्शाता है, चलने को, चाल चलन को दर्शाता है। जब हम दुनिया में रहते हैं हमारे चाल चलन में हम थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, कभी कभी हम पाप कर लेते हैं, तो पैरों का धोना जरूरी है। और वो है योहन्ना का पत्री का पहला अध्याय का 9वां पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो
विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें माफ करना है। इसलिए हमें अक्सर पैर धोने की एक और बात, बाइबल क्लासेस में हम रोमियो की पत्री का बाकी अध्यायों का भी अध्ययन करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। छठा अध्याय में ये पाया गया है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, यानी पाप का हम पर अब अधिकार नहीं है, हम पाप के वश में नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है। पिछले समय हमने देखा था ना कि हमारा छुटकारा का मतलब है कि हम उस गुलामी का बाजार में से बाहर निकल चुके हैं, अब फिर से हमारी बिक्री नहीं होगी, फिर से हमारी नीलामी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा दाम देके हमें बाहर निकाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इस बात पर क्यों जोर दे रहा है कि हमारा पुराना मनुष्य मर चुका है। मर चुका है तो मर चुका है, मरने के बाद क्या करते हैं, जलाते हैं या दफन किया जाता है। हमें क्यों बता रहा है, हमें इसलिए बता रहा है कि हम उसको फिर से जिंदा ना करें। क्यों? क्योंकि एक मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ्य और अधिकार हमारे अंदर डाल दिया है परमेश्वर ने। क्या परमेश्वर ने यह सामर्थ्य और अधिकार में दिया है? इसलिए तो हम मुर्दों को जिंदा करने की प्रार्थना कर सकते हैं। वो उस सामर्थ्य और उस अधिकार को गलत मुर्दे को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आया नहीं? हमारा पुराना मनुष्य मरा हुआ है, हम अक्सर उसको जिंदा करते हैं। बात सोचिए इस बारे में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों को जानने के बाद पुराना मनुष्य को कभी भी जिंदा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि अधिकार का गलत इस्तेमाल हो सकता है, बंदूक अच्छे कामों के लिए भी और गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसलिए सारी बातों का निचोड़ ये है कि हम पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझे अपने आप को। कभी भी पाप को ये अधिकार मत देना कि वो आपको चलाए, और ये फैसला करने का अधिकार एक विश्वासी के पास है। यानी मैं अपने लिए फैसला कर सकता हूँ, आप अपने लिए फैसला कर सकते हैं। पहली शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में भी जो विश्वासी उनसे पहले थे वो एक बात बोलते थे, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। और 20वीं और 21वीं शताब्दी के लोग, विश्वासी लोग, खास करके टीचर्स उसका मजाक उड़ा रहे, लेकिन वो इस सत्य को नहीं पकड़ पाए कि पहले शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में जो पेंटेकोस्टल मूवमेंट आया, उस समय के लोग यीशु मसीह का लहू क्यों बोलते थे हमेशा। वो इसलिए बोलते थे हम जो धर्मी बने हैं वो यीशु मसीह के लहू से बने। तो वो हर समय हर सिचुएशन में यीशु मसीह का लहू बोलकर इस बात का इकरार करते थे कि यदि हम परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो वो यीशु मसीह के लहू से है। और इस बात का भी वो इकरार करते थे कि हमारे जीवन में इस समय पाप है, लेकिन यीशु मसीह का लहू काफी है। और ऐसा करके वो शैतान से बच के रहते थे। वो शैतान से बचने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है यीशु मसीह का लहू, लेकिन जब वो यीशु मसीह का लहू बोलते थे वो इस बात को समझते थे कि उस लहू के कारण मैं धर्मी हूँ, और उस लहू के कारण जो पाप इस समय मेरे जीवन में है मुझे माफी मिल सकती है। यानी 19वीं शताब्दी के पेंटेकोस्टल लोग सही थे इस बात पर, पहले शताब्दी के लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे। चर्च हिस्ट्री में मैं डिटेल में से, तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक बार हम सब आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें धर्मी ठहराया, हमारे किसी भी काम के कारण नहीं परंतु यीशु मसीह के काम पर विश्वास।